ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे मत्तु यार दिव्यध्वनियु लोकहितवमाडिदे ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की षोडश कारण भावनाओं में से पांचवी भावना का नाम है संवेग भावना। इसके लिए अर्घ्य समर्पित करना है, पूजन करना है। उससे पहले इस भावना को समझने के लिए आप सभी लोग बैठे हैं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के संस्कार दृढ़तर हुए बिना, दृढ़तम हुए बिना, दृढ़तम हुए बिना क्या नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के संस्कार पड़ेंगे नहीं और बंध होगा नहीं। हम सब यहां संस्कार पाने हेतु आए हैं। यह संस्कार मजबूत हो, यह संस्कार निर्मल हो, दृष्टि की निर्मलता सीमा पर पहुंचे जिस सीमा पर इस कर्म का बंध होता है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सम्यक भावना के माध्यम से अपनी दृष्टि को निर्मल बनाएं। सम्यक भावना किसे कहते हैं? संसार से, शरीर से और भोगों से तीन बातें हैं। संसार से, शरीर से और भोगों से डरना, क्या करना? डरना, डर लगना चाहिए। अपन किससे डरते हैं? संवेग से ही डरते हैं, संवेग भावना से डरते हैं। और संवेग भावना ये बता रही है कि संसार से डरो, मेरे से नहीं। किसी एक जीव को संसार से वैराग्य होता है, तो वैराग्य जिसको हो जाता है वह मोक्ष मार्ग से डरता है या संसार से डरता है? संसार से डरता है। मोक्ष मार्ग से डरने वाला वैरागी नहीं होता, और जो वैरागी होता है वह मोक्ष मार्ग से नहीं डरता, बल्कि वह संसार के कारणों से डरता है। संसार के कारण ये तीन हैं जो अभी बताया, कौन कौन से? संसार, शरीर और भोग। इन तीनों से हमें भयभीत रहना चाहिए। ये प्रसंग जब आ जाता है कि ये भोग है, इसको मुझे भोगना पड़ रहा, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं, इनको मुझे ग्रहण करना पड़ रहा है, यह ग्रहण ही भोग है, यहाँ इंद्री विजय नहीं है। और वैरागी जीव इंद्री विजय प्राप्त करता है। 10 परिग्रहों से डरे बिना, भयभीत हुए बिना, उनमें अनासक्त परिणामों को जगाए बिना हम लोगों को संवेग भावना की उपलब्धि नहीं हो सकती। ये कहा जा सकता है कि चतुर्थ गुण स्थान में रहने वाला जो श्रावक है, गृहस्थ है, वह भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, कर सकता कि नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसको संवेग भावना से श्रद्धान तो है, लेकिन श्रद्धान के साथ साथ अनुभूति भी तो मिलनी चाहिए। संवेग क्या होता है? संसार शरीर भोगों से विरक्ति का नाम संवेग है, और यह संवेग जीवन में नहीं आता है तो भावनाओं में बल पैदा नहीं होता, और जब तक भावनाओं में बल पैदा नहीं होगा तब तक विशुद्धि अपनी चरम सीमा को छू नहीं सकती। वहां जाकर के इसको टच करना है ना, वहां जाकर के टच करते ही इसमें करंट उतर जाता है, और जब करंट उतर जाता है तो उसके साथ बिजली आ जाती है, यानी लाइट यहां पर लग जाती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद का प्रारंभ होने का मतलब यह है कि लाइट लग गई। किससे लगी? 15 वायर हैं यहां, और मेन वायर है दर्शन विशुद्धि, जो वह बाहर से यहां तक आई। घर में जब आप करंट लेते हैं ना, तो एक मुख्य वायर होता है, वह मेन वायर से टच करके मीटर तक आता है। कौन सा मीटर? ट्रांसमीटर। हाँ, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर तक वह आकर के यहाँ टच होता है, और यहाँ से फिर आपके घर के सारे लाइट जलती, यहीं से कनेक्शन जाता है। तो जहां पर एनर्जी मीटर है वहां आपके सारे वायर घर के जुड़े हुए हैं, और वो वायर कितने हैं? 15 हैं। और एनर्जी मीटर के पास तक आने वाला वायर एक है जो बाहर से आया है, उसका सीधा संबंध कोयना से है, उसका सीधा संबंध कोयना से है, और यहां पर सीधा संबंध हमारा महावीर भगवान से, तीर्थंकर से है, वो कोयना है, और वहां से ये करंट सम्यक दर्शन का हमारे एनर्जी मीटर तक पहुंचा है, सीधा संबंध है। यह सम्यक दर्शन जो हमारे लिए प्राप्त हो गया, ये किसके दर्शन से हुआ? तीर्थंकर के दर्शन से हुआ, और तीर्थंकर के दर्शन करते करते सम्यक दर्शन हुआ, तो यह एक जो स्थूल संवेग होता है उसके बिना भी यह सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय कहा कि संसार शरीर भोगों से जो निर्विण होता है स्थूल रूप से, यानी कि ये संसार शरीर भोग दुखदायी हैं, मुझे सुख प्राप्त करना है जो शाश्वत है। ये भोगों का सुख नश्वर है, क्षणिक है, स्थायी नहीं है। भोगने पर पुनः उल्टा दुख प्राप्त होता है, वो कालांतर में सुख का निमित्त नहीं बन सकता, साधन नहीं बन सकता, कारण नहीं बन सकता। तो ये जो हमारा सांसारिक भौतिक सुख का सुख है, ये काम का नहीं है। इतना समझ में आ जाए पहले, इसको भी संवेग ही बोलते हैं। ये जगन्य अंकुर है। ये जब पेड़ उगता है तो बीज को बोने के बाद पहला अंकुरित होता है। आम का पेड़ गुटली बोया जाता है, गुटली अपूस आम की गुटली होती है, फल से आता है वो, और उसको हम भूमि में बो देते हैं तो अंकुरित होता है। वह अंकुरित होता है तो उसको फल नहीं लगते। क्या अंकुरण के काल में ही फल का दर्शन होगा? फल भी नहीं, फूल भी नहीं, शाखा भी नहीं और पत्ते भी नहीं। अभी तो वह अंकुरित हो गया है, और अंकुरित होते समय उसका मुख कैसे होता है? यदि अंकुरण ही होना है, फल ही देना है, अपने जीवन का विकास करना है, तो वह अंकुरण के काल में ऊपर आकर के यूं झुकता है। पहले देखा है कभी अंकुरों को? किसी भी अंकुर को, किसी भी पेड़ के, पौधे के, घास के, किसी भी अंकुर को देख लो, जब वह ऊपर उठने लगता है धरती को छोड़कर, तब वह झुकता है। ये झुकने का मतलब क्या है? क्यों झुकता है वो? हाँ, कहीं भी झुके बिना सुखमय जीवन की प्राप्ति नहीं होती। जीवन में सुख है तो झुकना पड़ेगा, और झुकना यह प्राथमिक लक्षण है। और यह प्राथमिक लक्षण देखो मोक्ष मार्ग में भी दिखाई देता है। जब तक कोई संसारी जीव आठ मूल गुणों को धारण नहीं करेगा और ये समझकर कि मेरे लिए परमार्थ का सुख उपादेय है और सांसारिक सुख है, संसार शरीर और भोग ये तीन हैं, ये हमारे लिए है हैं और आत्मा का सुख उपादेय है, इस प्रकार की बुद्धि जब तक तैयार नहीं होती, इस प्रकार के विचार जब तक अपने मन में तैयार नहीं होते, तब तक इस बीज से, इस गुटली से, आत्मा एक गुटली के समान है और इस गुटली से वह परमार्थ का अंकुर उत्पन्न नहीं होता। और उत्पन्न हो जाए तो प्रारंभ में ही वह नम्र होता है। कैसे नम्र होता है? ये पंच पाप मेरे लिए दुखदायी हैं, ऐसा कह करके मंद कषायी हुआ क्या? नहीं। ये मंद कषायी किसका लक्षण है? ये झुकने का लक्षण है। अब तो झुक गए, क्या हो गया आपको? लोग कहते, कौन लोग कहते हैं? वैरागी। मैं कह रहा था, पूर्व से ही कह रहा था, समझा रहा था कि संसार शरीर भोग में कोई सुख नहीं है, समझा रहा था, मानते नहीं थे, लेकिन अब क्या हो गया? एकाएक ही महाराज समझ में आ गया है हमको। महाराज हमको समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? अभी जो आप कहते थे हमने प्रैक्टिकल करके देखा। क्या प्रैक्टिकल किया? मैं घर में गया, भोगों में सुख है क्या देखा, लेकिन उसके पश्चात मुझे दुख मिला। उसको अनुभव करते समय सुख मिला, क्षणिक मिला, लेकिन उसके पश्चात मुझे दुख ही हाथ लगा। मुझे लगा कि यह प्रारंभिक अवस्था में तो मधुर है, लेकिन अंत में बहुत जहरीला है। ये भविष्य के सुखमय जीवन को भी विनाश करता है और वर्तमान के सुखमय जीवन को भी पूरी तरह से सुखमय रखता नहीं। एक बार उसको ग्रहण करने से पुनः प्यास जगती है, फिर उस प्यास को हम बुझाने के लिए जब जाते हैं तो पुनः और जगती है। जब भोगों के इस प्यास को बुझाने के लिए मैं प्रयत्न करता रहता हूं तो ये बुझ नहीं पाती और अशांति हो जाती है। उल्टी भोग के बाद शांति मिलती है कि अशांति? अशांति मिलती है, शांति नहीं मिलती। और उस काल में प्रायश्चित के भाव भी आते हैं, आते ही कि नहीं आते? पश्चाताप होता है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था और मैंने कर लिया। पश्चाताप के भाव उत्पन्न होते हैं। ये पश्चाताप के भाव उत्पन्न होने की जरूरत क्या है? अगर वास्तविक सुख वही है तो संसारी प्राणियों को संसार सुख भोगने के बाद पश्चाताप के भाव क्यों आते? आना नहीं चाहिए था ना, लेकिन आते हैं। इसका मतलब ये है संसारी प्राणियों को भी पता है कि यह दुखदायी है और दुखदायी होने से ही पश्चाताप के परिणाम उत्पन्न होते। सम्यक भावना यही बता रही है। सम्यक भावना कहती है कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ने का प्रथम कदम आपका होगा, बिल्कुल झुके हुए रहोगे। झुके बिना हम ऊपर खड़े नहीं हो सकते। ये ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में चौकट बहुत छोटा है, भगवान का दर्शन अंदर है, करना है, भगवान का मुख बाहर से दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रवेश के काल में आपको झुकना पड़ेगा। कितना झुकना पड़ेगा? चौकट के हिसाब से झुकना पड़ेगा। बहुत ही छोटा है तो बहुत झुकना पड़ेगा, जरा छोटा है तो जरा झुकना पड़ेगा, जरा छोटा है तो मान को झुकाना पड़ेगा, बहुत छोटा है तो मान को भी और कमर को भी, दोनों को झुकाना पड़ेगा। यहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत सरल बताया है। और जो संसारी प्राणी सम्यक दर्शन रूपी धर्म को प्राप्त करता है, वह सरल होने के कारण उसको कमर झुकाना नहीं पड़ता। सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय कमर झुकाने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल गर्दन झुकाने की जरूरत है। गर्दन झुकाने के बाद फिर कमर झुकता है, क्योंकि अभी पेड़ ही नहीं बना तो कहां झुकाएगा, पहले गर्दन ही तो झुकाता है। वह अंकुर जब ऊपर आता है तो अपने सिर पर उस बीज को उठा लेता है, या बीज नहीं उठता है तो अपने पत्तों को यूं बंद करके उनको झुका करके ऊपर उठता है। ये अभी तो गर्दन झुका रहा है, अभी तो गर्दन झुका रहा है, अभी कमर झुकाना है, वो बाद में होगा। कैसे बाद में होगा तो देख लो, सम्यक दर्शन प्राप्त करते समय बहुत ज्यादा कहां झुकना पड़ता है? नहीं, क्या करना पड़ता है? आठ मूल गुणों को धारण करना, यानी संसार शरीर भोगों में संतोष भावना को जागृत करना। क्या बता रहा हूं? संतोष भावना को केवल जागृत करना, जरा भी संसार शरीर भोग को त्याग नहीं करना। संतोष भावना को जागृत करने के लिए भी कुछ झुकना पड़ता ही है। कितना झुकना पड़ता है? इतना ही। अनंतानुबंधी कषाय को मंद कर दो, करते 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 उसको उपशमन कर दो। बस मंद और उपशमन दशा को प्राप्त होते ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सूर्योदय हो गया। अब सूर्योदय होने के उपरांत वह सूर्य चढ़ता 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 12 बजे तक शिर पर आता है, आकाश के बीच में आता है। यहां तक तो विकास हुआ, लेकिन ढलान भी है कि नहीं? उसके लिए कितने बजे के बाद ढलान है? 12 बजे के बाद फिर ढलान शुरू होता है। जो उगता है उसके लिए ढलान भी नियम से होता है। जो प्रारंभिक रूप में थोड़ा सा झुकेगा, वो दूसरे स्टेप पर कमर को भी झुक करके बहुत झुकना पड़ेगा। संवेग दो प्रकार का, एक थोड़ा झुकने वाला संवेग, जो केवल हम जिसमें मान को ही झुकाते हैं, इसमें अनंतानुबंधी कषाय उपशमन होता है। पहले तो मंद होता है, मंद होते 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 उसकी शक्ति, उसका बल इतना कमजोर हो जाता है कि वो उपशमन होने को तैयार हो जाता है। उपशमित होता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। अब आपको कौन सा गुणस्थान प्रकट हो गया? सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया तो गुणस्थान कौन सा? चौथा गुणस्थान हो गया। कुछ हल्के हो गए क्या? नहीं हो गए। सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के बाद आप पीछे मुड़ करके देखो, पहले मैं क्या था, अब क्या बना? पीछे के दिनों को याद करो कि मैं पहला क्या था, अब क्या बना? संवेग भावना की अनुभूति होगी क्या? नहीं होगी। कितनी? थोड़ी सी होगी, लेकिन इसमें तरक्की चाहिए, और भी तरक्की चाहिए। वह तरक्की और करना चाहते हैं तो अभी तो चतुर्थ गुणस्थान में आए हैं, अब पंचम गुणस्थान की सीढ़ी को चढ़ने का प्रयत्न करना है। तो पंचम गुणस्थान की सीढ़ी चढ़ लिया तो कमर को ज्यादा नहीं झुकाया, थोड़ा झुकाया। लेकिन मंदिर का चौकट यदि बहुत ही छोटा है तो उतना झुकने से चलने वाला नहीं है। सिर तो बच जाएगा लेकिन कमर में टक्कर होगा। कमर को बचाने के लिए यदि आप और प्रयत्न करते हैं तो पूरा झुक जाते हैं, और घुटनों को भी जरा झुका देते हैं तो फिर अंदर प्रवेश होता है। झुकने के कितने कितने माध्यम है यहाँ शरीर को? एक मान है, एक कमर है और एक घुटने हैं। तीन है ना? तो यहाँ पर भी तीन है, देख लो। सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय आपने मान झुकाया और देश व्रत को धारण करते समय आपने कमर झुकाया, और झुकाते झुकाते झुकाया, प्रथम प्रतिमा में जरा झुक गया, द्वितीय प्रतिमा में और जरा झुक गया। कमर को झुकाने के कितने स्टेप हैं? 11 स्टेप हैं, इससे ज्यादा नहीं। और 11 स्टेप तक आप झुक गए तो कमर तो इतना ही झुकेगा, इससे ज्यादा नहीं। ज्यादा झुकोगे तो टूट जाएगा। अब कमर नहीं झुका सकते, अब आपको घुटने को झुकाना है। कमर यूं करने से भी अंदर प्रवेश नहीं हो पा रहा है तो घुटने को झुकाओ, और वह घुटना झुक जाता है, झुकना प्रारंभ होता है तो वह 11वीं प्रतिमा से पार कर जाता है। महाव्रत को लेते समय हमारे घुटने झुकते, अनुव्रत को लेते समय हमारा कमर झुकता है, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करते समय हमारा मान झुकता है। मान यह अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी गर्दन, ये कैसे रहता है मालूम? जब धन आता है, संपत्ति आती है, सोना चांदी आभूषण वैभव, बाहर का ये संपत्ति वैभव आता है, आ गए थे, वैभव तो आता ही है, हर प्रवचन में वैभव की ही बात चलती है। हाँ, उस वैभव को भी असली वैभव पता चल गया है, पता चल गया है क्या करना है। मैं क्या बता रहा था, गर्दन को हम झुका नहीं सकते, किस कषाय के उदय में, अनंतानुबंधी कषाय के उदय में किसी का गर्दन झुकता नहीं। यदि करोड़पति है, अरबपति है, तो अरबपति किस आश्रय से वह अरबपति है, पर के आश्रय से या स्व के आश्रय से? आत्मा के आश्रय से तो करोड़पति कोई संसार में है ही नहीं। आत्मा के आश्रय से तो करोड़पति दिगंबर मुनि ही हो सकते, किंतु पर के आश्रय से, जड़ के आश्रय से, धन के आश्रय से, बाह्य परिग्रह के आश्रय से, ये चेतन परिग्रह, ये अचेतन परिग्रह, ये मेरे हैं कहते 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 जब संग्रह करना प्रारंभ कर देता है तो संग्रह बहुत हो जाता है, तो उसको देख करके, पहाड़ के समान संग्रह को देख करके वह खुशी का अनुभव करने लगता है। और पहाड़ को देखते समय अपना गर्दन कैसा होता है, और ऊपर होता है, और पहाड़ देख देख करके संस्कार आए हों तो वो जल्दी नहीं झुकता, क्योंकि पहाड़ देखने की आदत पड़ गई है, संस्कार आ गए हैं। तो उस जीव को जो बाहरी पदार्थों को देख देख कर वो मूर्छित हो गया है, वह मूर्छा हटाना कोई आसान बात नहीं है। उस पहाड़ को देखने के लिए संतोष वृत्ति को धारण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के अपना गर्दन थोड़ा सा यूं फ्रैक्चर रहता है यहाँ, तब तक थोड़ा थोड़ा यूं होता होता नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे के और नीचे का वैभव दिखने लगता है। ये भी तो बाहर का है, ये देखता है, अभी तो उतना पहाड़ देखा, ये भी तो थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ये भी काम का नहीं, ऐसा लगता। जमीन से लेकर आकाश तक जो पहाड़ हो गया है, वो पहाड़ किसी काम का नहीं है। जब ये किसी काम का नहीं है ये समझ में आता है, तो वह आंख मीच करके चिंतन में डूब जाता है। फिर ये काम का नहीं है तो फिर काम का क्या है? फिर आंख मीचने के बाद अंदर का वैभव दिखता है, तब तक बाहर का वैभव दिखता था, अब अंदर का वैभव दिखने लगता है। फिर उसको देख करके, अरे यहां पर भी तो कुछ वैभव है, ये तो अद्भुत लग रहा है, इसको देखते ही मुझे आनंद ही आनंद मिल रहा है, ये ऐसा कैसा, हमारी आंखें चमकने लगी हैं। और उस वैभव को देखते समय आंखें तो चमकती थी लेकिन जलन भी करती थी, लेकिन यहां जलन नहीं है, चंद्रमा को देखने के समान आनंद आ रहा है। उसको तो देखते समय आंखें जलन करती थी, वो सूरज के समान था, बाहर का वैभव सूरज के समान है, लेकिन भीतर का वैभव चंद्रमा के समान है, शांति प्रदान करता है। इस वैभव का दर्शन होते ही आंखें मिट जाती है, जब आंखें मिट जाती है तो यदि वैभव से दृष्टि नहीं हटती है तब तक वह जागृत रहता है, और वैभव से दृष्टि हटी, जरा प्रमाद हुआ तो यूं नींद आने लगती है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? एक वैरागी को भी, एक सम्यक दृष्टि को भी, एक संयमी को भी, संयम धारण करने के बाद सामायिक में बैठते हैं तो अंदर के वैभव के प्रति जब हम जागृत नहीं रहते, उसमें प्रमत्त अवस्था में आ जाते हैं, तो उस समय झपकी लगती, झपकी, मराठी में क्या बोलते झपकी को, झुरकी, धुड़की, हाँ, गुलकी, धुलकी, दुलकी, हाँ, दुलकी, डुलकी लगती है, डमरूडर, हाँ डुलकी डुलकी लगती है। अच्छा अच्छा डमरूडर, तो डमरू को याद किए बिना नहीं याद आता, डुलकी याद करने के लिए भी डमरू चाहिए। संयम पूर्ण जीवन में भी देखो वो वैभव को पहचान कर पाए, कर चुके हैं वैभव को, अंदर के वैभव को पहचान कर चुके हैं, निश्चित हो गया है कि उसको पाना है। सामायिक में उसी वैभव का चिंतन करते करते जब वैभव के चिंतन में विशुद्धि और दृष्टि दोनों कमजोर पड़ जाती हैं, तो उस समय डुलकी आ जाती है। ऐसा होता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, जागृत रहना चाहिए। जो भीतर के वैभव में तल्लीन होकर, कौन सा वैभव है वो संयम है, वह सम्यक ज्ञान है, वह सम्यक दर्शन है, ये तीन रत्न हैं। ये रत्न जब हमारे आंखों से दिखने लग जाएंगे तो चंद्रमा से अनंत गुना जो प्रकाश है, शांत प्रकाश, उस शांत प्रकाश को देखते 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 हमारे लिए अपार आनंद मिलने लगता है। ऐसे आनंद की अनुभूति होती तो है, लेकिन प्रमत्ता प्रमत्त, प्रमत्ता प्रमत्त दो गुणस्थान है मुनि के। प्रमत्त गुणस्थान में आ जाते हैं तो डुलकी लगती है, क्योंकि अभी कर्मों के बंधन में है ना आत्मा, अभी दर्शनावरणी कर्म का उदय है ना, तो निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ध्यान वृद्धि, ये पांच प्रकार की निद्राएं हैं। इस ध्यान वृद्धि आदि का भी उदय छठे गुणस्थान में उदय, बंद तो नीचे है, उदय वहां पर छठे गुणस्थान में भी है। ध्यान वृद्धि निद्रा कर्म का उदय हो जाए तो प्रमत्त अवस्था, और वैभव के प्रति एकदम जागृत हो, विशुद्धि जीवित हो तो निद्रा, छोटी निद्रा, पता भी नहीं चलती छोटी निद्रा। वैभव को देख रहे हैं, आनंद आ रहा है, कर्म की निद्रा भी हो रही है, ध्यान भी जारी है, शुक्ल ध्यान भी जारी है, धर्म ध्यान तो छोड़ो, शुक्ल ध्यान के काल में भी ये निद्रा कर्म का उदय है, लेकिन आदमी डुलकी नहीं लेता इसमें, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल नहीं सकता। अनुभव करते हुए भी वह निद्रा कर्म का उदय है, लेकिन वह अपने ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, अपने विशुद्धि को, अपनी चेतना को, अपने बल को क्षीण नहीं कर सकती। उदय में है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। निद्रा आदि कर्म ये प्रभाव देने के लिए छठा गुणस्थान चाहिए, प्रमत्त होना आवश्यक है। डुलकी लेने के लिए तो छठा गुणस्थान ही चाहिए, सप्तम गुणस्थान में डुलकी ले नहीं सकते, है निद्रा का उदय लेकिन उदय है प्रभाव नहीं। उदित द्रव्य कर्म के उदय से प्रभावित होने के लिए आत्मा प्रमत्त होना आवश्यक है, तब वह कर्म फल देता है। सुन रहे हैं ना, कैसे सुन रहे हैं? आंख मीच कर या आंख खोल कर? हाँ, आंख मीच करके जब आप सुनेंगे ना, तो ये धार्मिक प्रवचन ऐसा मधुर रहता है, ऐसा मधुर रहता है कि डुलकी आ ही जाती है। ये धार्मिक प्रवचन मधुर ही होते हैं, आत्मा के लिए होते हैं। इनको कितना भी सुनाओ, आत्मा को कष्ट नहीं होता, आनंद आता है। लेकिन आनंद तब आएगा जब आंख खोल करके क्या कह रहे हैं ये, ऐसा जागृत होकर के सुनेंगे तो आनंद आता है। और आनंद आते समय अगर आंख मीच गई तो फिर डुलकी शुरू हो जाती है। आंख मीचती है अंधेरा आ जाता है, अंधेरा आ जाता है अंधेरा छा जाता है, अंधेरा छाते ही डुलकी आ जाती है। तो ऐसा नहीं सुनना प्रवचन, कैसे सुनना? आंख खोलकर लक्ष्य पूर्वक प्रवचन सुनना। क्या बता रहा हूं मैं, मुनि महाराज सामायिक में बैठे हैं, छठे सप्तम गुणस्थान में आना संभव है। छठे में आ गए तो उनको भी ढुलकी आ सकती है, क्योंकि छठा गुणस्थान है तो आएगी। सिद्धांत बता रहा है कि छठे गुणस्थान तक दर्शनावरण आदि कर्म फल देते ही हैं, निद्रा कर्म की उदीर्णाया होती है, होती कि नहीं होती? होती है। होती कि नहीं होती? होती है। किस गुणस्थान में? छठे गुणस्थान में। इसका मतलब छठे गुणस्थान में भी जा करके आपने देखा है, इसलिए होती है महाराज। ये क्यों नहीं कहा कि महाराज आपको ही मालूम? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सही उत्तर आया। आगम में है इसलिए हम कह रहे हैं, आगम में तो है ही, छठे गुणस्थान तक निद्रा कर्म फल दे सकता है, दे सकता है। किंतु सप्तम गुणस्थान में जाने के बाद निद्रा कर्म का उदय जरूर रहता है, लेकिन वह निद्रा कर्म जो जड़ पुद्गल परमाणु के उदय के रूप में है, अपनी स्थिति को पूर्ण करके उदयावली में प्रवेश करके उदयागत हो गया है, वह निद्रावरणी कर्म, निद्रा कर्म आत्मा को डुलकी नहीं ला सकता, डुलकी नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इतना प्रभाव नहीं, इतना बल नहीं, क्योंकि आत्मा का बल तेज हो गया है, आत्मा का बल बढ़ गया है, आत्मा जागृत है, जागरण अवस्था में है। तो हम जब जागरण अवस्था में रहते हैं, निद्रा कर्म का उदय भी हमारे लिए फल नहीं दे सकता, उसके पास कोई ताकत नहीं है, उदय में आकर के खड़ा है लेकिन प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही प्रभाव नहीं पड़ता जैसे ऊपर ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है और यहाँ पर उदबत्ती जलाया है, उदबत्ती जलाया है, उसका प्रकाश होता है कि नहीं? कुछ न कुछ होता है, लेकिन वह उदबत्ती का प्रभाव इस लाइट के प्रभाव में कोई अपना प्रभाव डाल सकता है? नहीं डाल सकता, क्योंकि इसके प्रकाश से उसका प्रकाश हजार गुना अधिक हो गया है, तो ये अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। इस प्रकार से निद्रा कर्म का उदय सप्तम गुण स्थान में रहने वाले मुनि महाराज को अप्रमत्त अवस्था में अपना प्रभाव दिखा नहीं सकता, और यदि वही मुनि महाराज छठे में आ जाए तो हाँ उसका प्रकाश भी दिखने लगता है, तो उसका प्रभाव भी आत्मा के ऊपर पड़ेगा, और उसका प्रभाव पड़ेगा तो निद्रा डुलकी आएगी। इधर डुलकी आएगी, उधर डुबकी छूट जाएगी। आत्मा में बार बार डुबकी लगा रहे थे, आनंद ले रहे थे, वो उधर डुबकी छूटती है और इधर डुलकी आती है, और फिर भूख लगी तो आहार के लिए जाने की इच्छा होती है, ये इच्छा भी छठे गुणस्थान प्रमाद है, ये भूख लगी है अब मुझे आहार के लिए निकलना है, ये कौन सा गुणस्थान? छठे गुणस्थान। आत्मा में थे, डुबकी लगा रहे थे, छठे में आए डुलकी लिए, फिर बाद में विचार आया भूख भी लगी है तो भी छठे में, और आहार के लिए निकल गए, हाथ धोए, खड़े हो गए, और वहां पर खड़े होने के बाद फुल्की आ गई, और फुल्की आने के बाद फिर उसके ऊपर गिलकी आ गई, फिर गिलकी आने के बाद फिर वो जो जारी के वो बनते हैं ना फूले, लाया वे लाए देने के लिए, और फिर ये रुक गिलकी फुल्की खाए, गिलकी खाए, अब ये लाए कैसा है? ये हल्की है, ये हल्की आई, तो लाया खाए, अब हो गया। ये सारा कार्य किस गुणस्थान में संपन्न हो गया? छठे गुणस्थान, जो गुणस्थान का ज्ञान तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से होता जा रहा है। अब गुणस्थान क्या है इसको समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। छठा गुणस्थान कहते हैं हाँ पर कौन है ये पता चल जाता है। छठे में कौन होते हैं? केवल मुनि महाराज ही या श्रावक भी? आरिका पंचम, छुल्लक ऐलक पंचम, प्रतिमाधारी और ब्रह्मचारी पंचम भी चतुर्थ भी, ठीक है। आज संवेग भावना है, बहुत अच्छी तरह से इस भावना को समझ करके पूजन करना है। अर्घ चढ़ाते समय आंखें नहीं मीचना, डुलकी आ जाएगी। अर्घ चढ़ाते समय हे भगवान मैं इस संवेग भावना की प्राप्ति के लिए ये नश्वर अर्घ चढ़ाकर वो संवेग भावना रूप जो गुण है, जो आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण है, वो ध्यान रखना, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले ये गुण प्रकट होता नहीं है, ये सम्यक दर्शन के साथ ही प्रकट होता है। जिसके पास सम्यक दर्शन है उसके पास ये गुण है ही। कौन सा? संवेग, संवेग भावना। संवेग भावना भी एक गुण है। संवेग यानी संसार शरीर भोगों से जो अनासक्त है उससे डरता है। अनासक्त व्यक्ति ही डर सकता है, आसक्त व्यक्ति नहीं डर सकता। तो इसमें जो आसक्ति का यह प्रदर्शन है, व्यक्त पहचान है बाहर में, ये पहचान ही हमारे लिए ये बता रहा है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है। सम्यक तो है या नहीं हमारे पास, इसको कैसे पहचाने महाराज, ऐसे पूछते हैं कई लोग। लक्षण से पहचानना चाहिए। इसके लक्षण क्या है? तो तीन लक्षण हैं, संसार से, शरीर से और भोगों से। इससे भयभीत हो रहा है और इसके सुख में सुख नहीं मानता है तो फिर वह संवेग का लक्षण है। उसके पास संवेग गुण प्रकट हुआ है और संवेग गुण जहां है वहां पर नियम से सम्यक दर्शन को होना ही चाहिए, होता ही है, नियम से होता है सम्यक दर्शन। सुन रहे हैं? क्या देख रहे हैं? इधर देख रहे हैं कि उधर देख रहे हैं? चावल देख रहे हैं कि इधर देख रहे हैं? चावल तो बाद में चढ़ाएंगे, इधर देख लो। संवेग भावना पाइजे का नहीं पाइजे? पाइजे अनिकाय पाइजे, संवेग भावना पाइजे अनि रोज रोज प्रवचन पाइजे, सत्संग पाइजे, प्रवचन पाइजे, सत्संग पाइजे, रोज रोज पाइजे अनि अनेक वेळ पाइजे। एक वेळ नव अनेक वेळ पाइजे। पाइजे कि नहीं पाइजे? पाइजे। काय पाहिजे? जे पाहिजे, जे पाहिजे, जे पाहिजे, सगळं पाहिजे। मोक्ष मार्ग में चलते समय क्या क्या आपको चाहिए है वो सब यहाँ पर रेडीमेड सामग्री दी जा रही है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध तीर्थंकरों के पादमूल में ही क्यों होता है? इसलिए कि तीर्थंकरों के पादमूल में नहीं होगा तो मुनि महाराज तो संयमी है, मुनि महाराज को भी उसका बंध होता है तो उनको कहाँ बंद होगा? उनको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद तीर्थंकरों के सन्निधि में ही होता है। श्रावक भी जाएगा तो तीर्थंकरों के सन्निधि में ही उसका बंद करेगा। और ऐसे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला भव्यात्मा पुण्य की अपेक्षा से देखो तो इस तीन लोक में किसी भी जीव का पुण्य उतना नहीं होता, उतना पुण्यवान बन जाता। इसलिए उस जीव को तीन लोक का मालिक माना जाता है। नहीं समझे। तीन लोक का मालिक कौन? सिद्ध भगवान। और चक्रवर्ती छह खंड के अधिपति, अपने स्थानीय अधिपति छह खंड के। और ये मध्यलोक कितना बड़ा है और वो कहाँ पैदा हुआ है? एक आर्यखंड में, और उसके आसपास में जो म्लेच्छ खंड पांच होते हैं उसके अधिपति हैं। तो मध्यलोक के भी एक टुकड़े के अधिपति हैं ये, एक टुकड़े, एक थोड़ा सा भाग। चक्रवर्ती का पुण्य इतना नहीं? हम बहुत बड़े समझते हैं चक्रवर्ती को, कहां बड़े। लेकिन तीर्थंकर तीन लोक के अधिपति, तीन लोक में नहीं, हाँ मध्य लोक में जितने चक्रवर्ती हैं, मध्य लोक में जितने चक्रवर्ती हैं वे सारे चक्रवर्ती कहां शरण लेते हैं? तीर्थंकरों के चरण में शरण चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये शरण जाने के भाव क्यों हो रहे हैं? उनका पुण्य है, वे गुणों में बड़े हैं, वे पुण्य में बड़े हैं। जो गुणों में बड़े होते हैं उनका पुण्य राशि अपार राशि होती है। जो संसार में गुणों से बड़ा बनता चला जाता है तो उसके पास भी क्वालिटी वाला पुण्य संग्रहित होता चला जाता है। चक्रवर्ती बनने के लिए जो पुण्य संग्रह करना चाहिए ना, वह पुण्य भी इतनी क्वालिटी वाला पुण्य नहीं होता। नहीं समझे? हल्का होता है, क्वालिटी वाला पुण्य नहीं होता, क्वालिटी हीन होता है। लेकिन तीर्थंकर बनने वाला जिस पुण्य को एकत्रित करता है वह एकदम क्वालिटी वाला पुण्य एकत्रित करता है, इसलिए वो तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर पुण्य को बांधकर, ये पुण्य का नाम है तीर्थंकर, ये कर्म का नाम है। ये कर्म पुद्गल परमाणु होते हैं, इन पुद्गल परमाणुओं का आकर के आत्मा के साथ मिलन होता है। ये मिलन होने के बाद आत्मा के साथ साथ चलते हैं। कहाँ तक साथ चलते हैं? जहाँ जाना हो परभव में वहां तक साथ चलते हैं, और आते समय में भी साथ आते हैं। एक बार ये बंद होने लग जाए तो जब तक आप तीर्थंकर भगवान नहीं बनेंगे तब तक ये बंद होते ही रहते हैं, उस भव तक बंद होंगे। यहाँ पर बंद होना प्रारंभ हो गया तो जीवन पर्यंत, मरण पर्यंत भी बंद होता रहेगा। किसी भी काम में आप रहे उस समय में भी बंद होता रहेगा, छूटता नहीं है, रुकता नहीं है। ये पुण्य ऐसा पुण्य है जो एक बार बंधना प्रारंभ हो गया तो लगातार बंधता रहता है, लगातार। और कब तक? यहां से पूरा जीवन पूर्ण करके मरण भी किया, मरण के काल में भी बंद रहा है। हम विग्रह गति में गए, रास्ते में हैं, उस समय में भी बंद रहे हैं। वहां पर शरीर धारण करने के लिए उस स्थान पर पहुंच गए, वहां पर भी बंद रहे हैं। और आपका शरीर पूर्ण बन गया, आप जीवित हो उठ गए, खड़े हो गए, उस समय में भी बंद रहे हैं, बंधते ही रहते हैं। कब तक? वहां पर भी आयु खत्म होने तक बंधेंगे। और फिर यहाँ पर मनुष्य गति में आकर के जन्म लेने के लिए आए हैं, आते समय बंधे, जन्म लेते समय बंधे, बड़े हो गए बंधे, राजा बन गए बंधे, राजपाट त्याग करके मुनि बन गए, बंध रहे हैं। और श्रेणी चढ़ गए तब भी बंध रहे हैं, श्रेणी चढ़ करके आठवें गुणस्थान में गए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग और छठा भाग, इसके कुछ भाग हैं। उस भाग में प्रवेश करने तक, छठे भाग में प्रवेश करने तक बंधते ही रहते हैं ये। और फिर छठे भाग का उल्लंघन हो करके आप बाहर चले गए तो गुरुत्वाकर्षण से बाहर गए, फिर गुरुत्वाकर्षण से बाहर चले गए तो फिर आपको अब बंद नहीं होगा। क्या होगा? बंद से छुटकारा, बंद विच्युति होगी, बंद से छुटकारा मिल गया। अब जो स्टॉक में है वो सारा का सारा अब उदय में आएगा। तो कब आएगा? जब तक बंद विच्युति नहीं होगी तब तक उदय में वो आ नहीं सकता। बंद विच्छुति नहीं होगी तो उदय में नहीं आ सकता। तो तीर्थंकर बनने वाला जीव गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर बनेगा क्या? गृहस्थ अवस्था में रह करके केवल ज्ञान प्राप्त करेगा क्या? एक मत ऐसा भी है हमारे यहाँ, एक मत ऐसा भी है जो श्रावक अवस्था में ही तीर्थंकर बन सकता है और वस्त्र उतारने की जरूरत नहीं है, और उनका समोशरण भी लग जाता है। और समोशरण में कैसे भगवान बैठे रहते हैं बताते हैं, वस्त्रधारी समोशरण में भगवान बैठे रहते हैं। बोलो, वस्त्रधारी भगवान कैसा बना? वस्त्रधारी को हम गुरु भी नहीं कह सकते तो भगवान कैसे कह सकते? हाँ, परिग्रह को लेकर के समोशरण में आ गए। आए कैसे? आए जरूर, आए कैसे? कल्पना से आए, खरे खरे में नहीं आए। खरे खरे तो कोई आ ही नहीं सकता। ये प्राकृतिक नियम है, निसर्ग नियम है कि जब तक जीव पर वस्तुओं से मोह को नहीं त्यागता तब तक मोक्ष नहीं मिलता। ये अकाट्य सत्य है क्या? थोड़ा थोड़ा सत्य है, अकाट्य सत्य है ना? इसको काटा नहीं जा सकता। अकाट्य का मतलब इसको काटा नहीं जा सकता, किसी हेतुओं से भी इसका काटना संभव नहीं है, इसलिए अकाट्य कहा है। वस्त्रधारी अवस्था में दो बातें मानना ये व्यर्थ है। कौन कौन सी बातें? वस्त्र अवस्था में केवल ज्ञान होता है, वस्त्र अवस्था में मोक्ष होता है, वस्त्र अवस्था में श्रेणी चढ़ता है, वस्त्र अवस्था में शुद्धोपयोग होता है। हाँ, शुद्धोपयोग हो गया तो केवल ज्ञान भी होना ही चाहिए ना, क्योंकि शुद्धोपयोग केवल ज्ञान का साधन है, साक्षात साधन है। और वह साक्षात साधन यदि गृहस्थ को ही मिल गया तो वस्त्र सहित तो केवल ज्ञान क्यों नहीं होगा? हाँ? होगा कि नहीं होगा? होना ही पड़ेगा। थोड़ा सा और ध्यान लगा लें और श्रेणी चढ़ जाएंगे। फिर शुद्धोपयोग ही हो गया, असंयम के साथ शुद्धोपयोग हो गया, चतुर्थ गुणस्थान में शुद्धोपयोग हो गया, असंयम के साथ हो गया, तो ऐसा थोड़ा सा बैठ जाए। बैठते ही श्रावक को ध्यान में शुद्धोपयोग हो गया, अब श्रेणी भी चढ़ सकता है। शुद्धोपयोग हो गया तो श्रेणी चढ़ो। तो श्रेणी किस गुणस्थान से चढ़ेगा? श्रेणी किस गुणस्थान से होता है? आठवें से। तो श्रेणी भी चढ़ सकता है, क्योंकि श्रेणी में शुद्धोपयोग तो नियम से रहता ही है। तो चतुर्थ गुणस्थान में आठवें गुणस्थान कैसे आ जाएगा? एक गुणस्थान में दूसरे गुणस्थान का प्रवेश होता है क्या? कितना गलत धारणा हो गई। वो शुद्धोपयोग संयम का अविनाभावी है। किस संयम का? सकल संयम का अविनाभावी है, यथाख्यात संयम का अविनाभावी है। संयम का अविनाभावी है ये घटाओ, और ये धारणा हटाओ, नहीं तो ये धारणा आपके लिए अभिशाप सिद्ध हो सकता है, क्योंकि धारणा से ही सम्यक दर्शन टिकता है ना। हमारी धारणा ही सम्यक दर्शन है। और कैसी धारणा? चतुर्थ गुण स्थान में रहने के बाद भी हम शुद्धोपयोग प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा प्राप्त कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा भी प्राप्त हो सकता है। फिर श्रेणी का शुद्धोपयोग भी यहां हो जाएगा। गुणस्थान मालूम नहीं है, इसलिए मालूम नहीं होने के काल में तो मिथ्या तो होता है। मिथ्या दर्शन कब तक रहता है आत्मा में? जब तक वस्तु स्वरूप मालूम नहीं होता तब तक मिथ्या तो होता है। वस्तु स्वरूप का सही पहचान, सही ज्ञान होने के बाद तो ऑटोमेटिक धारणा बदल जाती है, लेकिन पहचान करने के लिए प्रयत्न तो करना पड़ेगा। क्या हमने पहला को जो कुछ अध्ययन किया या पढ़ा, किसी से सुना, धारणा बना ली, वह ठीक है क्या नहीं है, इसको संशोधन करना पड़ेगा कि ऐसा बैठना पड़ेगा? संशोधन करना तो पड़ेगा, हो सकता है उसमें गलती हो, उसको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमारा सम्यक दर्शन टिका हुआ है। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की चिंता तो करनी पड़ेगी ना। गलत धारणा से सम्यक दर्शन कहाँ होता है, कब होता, होता ही नहीं। और सम्यक दर्शन का लाभ ही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या है स्वाध्याय करने का, धर्म करने का क्या मतलब रहा? मत उतारो ना, मत उतारो, कपड़े में ही रहो, लेकिन सम्यक दर्शन लेके रहो, अनुवृत्तों को लेकर के रहो, सामायिक करते रहो, लेकिन सामायिक में जो विशुद्धि बढ़ती है विशुद्धि का अनुभव करते रहो। लेकिन ऐसी क्यों धारणा बना रहे हो कि उस विशुद्धि को ही शुद्धोपयोग नाम दे दिया? विशुद्धि का नाम शुद्धोपयोग है क्या? नहीं, गलत है। ये विशुद्धि तो पहले गुण स्थान में भी होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के काल में जब पंच लब्धियां होती हैं, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साधन कहलाते हैं। इन पांचों लब्धियों में आत्मा की विशुद्धि रहती है, उस विशुद्धि को शुद्धोपयोग कहोगे और शुद्धोपयोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति का साधन मानोगे? विशुद्धि शुद्धोपयोग नहीं है, ये विशुद्धि शुद्धोपयोग नहीं, शुद्धोपयोग अलग चीज है। शुद्धोपयोग तो शुभोपयोग के पश्चात प्रकट होगा और शुभोपयोग अशुभोपयोग के पश्चात प्रकट होगा। पहले अशुभोपयोग को त्यागना पड़ता है, शुभोपयोग ग्रहण करना पड़ता है, फिर शुद्धोपयोग पर आना पड़ता है। शुद्धोपयोग का साधन शुभोपयोग है, जो पहले पहले होता है वो साधन माना जाता, साधन है। तो शुभोपयोग से शुद्ध की साधना कैसी की जा सकती है, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। कारण कौन और कार्य कौन? तो शुद्धोपयोग कार्य है, शुभोपयोग कारण है। तो शुभोपयोग कारण है तो ये शुभोपयोग किस रूप में है? तो मुनि की अपेक्षा से देखो, श्रावक की अपेक्षा से देखो, तो दोनों के पास शुभोपयोग है। मुनि को छठे सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग है और सप्तम गुणस्थान के निवृत्ति के काल में, ध्यान के काल में शुद्धोपयोग है। तो शुभोपयोग के काल में मुनि महाराज के पास जो सम्यक दर्शन होता है, वह सम्यक दर्शन किस प्रकार का होता है? शुभ रूप होता है। शुभ रूप होता है तो शुभोपयोग रूप होता है। शुभोपयोग रूप क्यों है ये देखो, छठे सप्तम गुणस्थान में शुभोपयोग के काल में जो शुभ भाव हैं, वह शुभोपयोग नहीं। मुनि महाराज का शुभोपयोग अलग है, मुनि महाराज के शुभोपयोग की परिभाषा अलग है। कैसे परिभाषा बना लेनी चाहिए? मुनि महाराज के शुभोपयोग के साथ तीन चौकड़ियों का अभाव है और वहां पर व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र है। तीन चौकड़ियों का अभाव, चौकड़ी यानी कषाय चौकड़ी और मिथ्यात्व का अभाव, 14 अंतरंग परिग्रहों का अभाव करने पर मुनि महाराज को शुभोपयोग की प्राप्ति होती है, छठे गुणस्थान वाला शुभोपयोग। और एक चतुर्थ गुणस्थान वर्ती श्रावक को भी शुभोपयोग होता है, शुभोपयोग उनके पास भी है और शुभ भाव भी हैं और विशुद्धि भी है। लो तीनों हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, तीनों हैं श्रावक के पास, सम्यक दृष्टि श्रावक के पास तीनों हैं, शुभ भाव भी है, शुभ लेशा भी है, शुभ योग भी है, विशुद्धि भी है और शुभोपयोग भी है। गुणस्थान चौथा है, चौथे गुणस्थान में घटित कर रहे हैं इन सभी को, एकाग्रता से सुनना है। चौथे गुणस्थान के श्रावक के पास क्या क्या है? तो शुभोपयोग है क्या नहीं है? ये शुभोपयोग किस कारण से है, ये प्रश्न है। शुभ भाव को शुभोपयोग मानना गलत धारणा है, विशुद्धि को शुद्धोपयोग मानना और शुभ भाव को शुभ लेशा को शुभोपयोग मानना ये गलत धारणा है, इसको हटाना चाहिए। उसके बिना तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि तत्व के निर्णय में गड़बड़ी हो गई है और जिनेंद्र भगवान का उपदेश ऐसा है नहीं। जिनेंद्र भगवान का उपदेश है शुभोपयोग की प्राप्ति जीव कैसे करता है, तो कहते हैं एक चौकड़ी के अभाव से शुभोपयोग को प्राप्त करता है। तो एक चौकड़ी को अभाव करने के लिए हमारे लिए साधन आवश्यक हैं, उन साधनों को शुभोपयोग मत कहना। उन साधनों को क्या कहना, उन साधनों को शुभ भाव कहो, शुभ लेशा कहो, विशुद्धि कहो, एक ही बात है। लब्धि में रहने वाले शुभ परिणाम कहो, विशुद्ध परिणाम कहो, एक ही बात है। ये विशुद्धि भी आत्मा की निर्मलता है, इस निर्मलता को शुद्धोपयोग मत कहो, क्योंकि शुद्धोपयोग नहीं है वो। शुद्धोपयोग तो बहुत ऊपरी चीज है, वह सप्तम गुणस्थान में जहाँ पर संयम के बिना हुआ उत्पन्न नहीं होता, उस संयम का अविनाभावी कहा है जिनेंद्र भगवान ने। और यहाँ पर पहले गुणस्थान में कोई संयम का सद्भाव नहीं है, अभी तो मिथ्यात्व गुणस्थान में है जीव, अभी असंयमी है। असंयम अवस्था में आत्मा की निर्मलता विशुद्धि से जरूर आ सकती है पंच लब्धियों में, इसको शुद्धोपयोग क्यों लगा रहे हो। कई ग्रंथों में ऐसा लिखा है ये जो विशुद्धि आत्मा की निर्मलता है, ये विशुद्ध परिणाम ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है, और ये कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है, ऐसा घटित किया। ये छद्मस्त का चिंतन है, छद्मस्त का चिंतन है, ये वीतरागी सर्वज्ञ भगवान का वाणी उपदेश नहीं है। किस पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, सर्वज्ञ के वाणी पर या छद्मस्त के वाणी पर? तो इनको किनारा कर दो, इनका स्वाध्याय हटाओ, ये ग्रंथ किस काम के, बाजू कर दो इनको, और इन्हीं स्थान पर क्या लाओ, सर्वज्ञ की यथार्थ वाणी को लाओ रखो और उसका स्वाध्याय करो, तो सम्यक दर्शन यथार्थ रूप में प्रकट होगा। तो यहाँ पर जो धारणाएं पहली गलत हो गई थी वो सब ठीक ठाक हो जाएंगी। सर्वज्ञ की यथार्थ वाणी को पढ़ना, कौन सा शास्त्र पढ़ना फिर महाराज, समयसार पढ़ो, लेकिन यथार्थ समयसार पढ़ो। छद्मस्त वाणी को ला करके आप अध्ययन करेंगे तो कोई उसमें निर्णय नहीं होगा, उलझन में पड़ेंगे और गलत धारणा बनेंगी, तो सम्यक दर्शन से भी वंचित रहना पड़ेगा। क्योंकि तत्व का यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, क्या अयथार्थ श्रद्धान का नाम भी सम्यक दर्शन? फिर सर्वज्ञ वाणी में जो यथार्थ व्यवस्था बताई गई है शुद्धोपयोग की प्राप्ति का, उसमें डिस्टर्ब कर दिया छद्मस्त ने। ये डिस्टर्ब बहुत समय पहले हुआ है, ये इस युग में ही हुआ है, 60-70 साल हो गए इसके लिए, ज्यादा उम्र नहीं है इसकी। किसी ने बता दिया तो धारणा बनती गई, उसके चपेट में जो सामान्य लोग हैं स्वाध्याय करने वाले वो सब आ गए और सम्यक दर्शन से वंचित रह गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, जिंदगी अभी शेष बची हुई है, लेकिन हमको जगना पड़ेगा कि नहीं जगना पड़ेगा? अगर मान लो उस छद्मस्त की धारणा से, उसको पढ़ने से शुद्धोपयोग हो रहा है, ऐसी धारणा तो बन गई हमारी, और शुद्धोपयोग की अनुभूति के लिए बार बार हम सामायिक भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, शुद्धोपयोग हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, प्राप्त कर लो, बहुत अच्छा है। लेकिन छद्मस्त के वाणी पर श्रद्धा है तो क्या वहां पर श्रद्धान सम्यक्तु रूप है? नहीं है, वहां पर सम्यक दर्शन है ये कहा नहीं जा सकता, बहुत बड़ा नुकसान है। छद्मस्त से डरना चाहिए, संसार शरीर भोगों से ही नहीं, श्रद्धान के काल में जो तत्व सामने होते हैं, सात तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, असयम के साथ ही संवर का कथन कर दिया। सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, संवर का कथन कर दिया। कैसे कर दिया? उस निर्मल विशुद्धि को ही, पंच लब्धियों में रहने वाली उस निर्मल विशुद्धि को ही सम्यक तो का साधन तो आचार्य ने माना है, भगवान ने भी माना है, लेकिन इस छद्मस्थ ने क्या उसको नाम दे दिया? वह शुद्धोपयोग है, वो शुद्धोपयोग है। और उसी शुद्धोपयोग से ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, चतुर्थ गुणस्थान वाला, जबकि वह सराग सम्यक दर्शन है जो प्राप्त हो रहा है। और सराग सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन से प्राप्त हुआ ये माना जाएगा, फिर उसको शुद्धोपयोग कहेंगे तो, क्योंकि शुद्धोपयोग वीतराग सम्यक दर्शन का अविनाभावी है, वीतराग संयम का अविनाभावी है, वीतराग सम्यक ज्ञान का अविनाभावी है। वह उपयोग निर्मल उपयोग है जिसमें रागादि भाव नहीं है। इस विषय को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए दो मिनट लेऊं क्या, खत्म करूं? हाँ, पंथ देखो, पंथ कब बनते हैं? छद्मस्थ की वाणी से हम चलना शुरू करेंगे तो पंथ बनेगा, और भगवान की वाणी से हम चलना शुरू करेंगे तो पथ रहेगा, पथ रहेगा। हाँ, शुद्धोपयोग में, शुभोपयोग में, शुभ भाव में बहुत बड़ा अंतर है। शुभ भाव तो प्रथम गुणस्थान में भी होते हैं, चौथे गुणस्थान में भी होते हैं। इन शुभ भावों को ही जब हम उतार चढ़ाव कर लेते हैं तो वह विशुद्धि नाम पाता है। शुभ भाव बढ़ गया तो विशुद्धि बढ़ गई। विशुद्धि का मतलब क्या है? कषाय की अत्यंत मंदता, अनंतानुबंधी की मंदता हो गई तो शुभ भाव हो गए, शुभ लेशा बन गई और विशुद्धि भी बन गई, विशुद्धि भी बन गई। विशुद्धि ये शुद्धोपयोग नहीं है, और न ही वह आत्मा की जो निर्मलता दिख रही है वो निर्मलता शुद्धोपयोग नहीं है। अब अंतर आपने पूछा, क्या प्रश्न था? शुभोपयोग में और शुभ भाव में अंतर क्या है? शुभ भाव को अनंतानुबंधी के उदय में भी हम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु शुभोपयोग को, शुभोपयोग को हम केवल शुभ भाव के बल पर नहीं प्राप्त कर सकते, अनंतानुबंधी का उपशमन करना पड़ेगा। अनंतानुबंधी कषाय का उपशमन जब तक नहीं होगा, या क्षयोपशम अवस्था प्राप्त नहीं होगी, या क्षय नहीं होगा, तब तक हमारे लिए शुभोपयोग प्राप्त नहीं होता। उपशमन काल में भी शुभोपयोग है, अनंतानुबंधी का संपूर्ण उपशम, उस काल में भी शुभोपयोग है। जब तक उपशमन नहीं करता और ऊपरी गुणस्थानों में नहीं जाता, उपशमन किए बिना तो ऊपरी गुणस्थान होते नहीं, उपशमन जब तक नहीं करता और ऊपरी गुणस्थान में नहीं जाता, तब तक शुभोपयोग का दर्शन होता ही नहीं। सम्यक दर्शन का दर्शन और शुभोपयोग का दर्शन एक साथ एक टाइम में होते, ये सिद्धांत के नियम ध्यान में रखते हुए छद्मस्थ के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत गड़बड़ी कर रखा है, वो अपने लिए जहर बन जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होने नहीं देगा, धर्म से वंचित रखेगा। जो हम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रख सकते थे उससे वंचित रख दिया उसने। बहुत विवेक से स्वाध्याय करना चाहिए। यदि ऐसे ग्रंथ हैं तो आप उससे भटक सकते हैं, तो कम से कम स्वाध्याय रोको उन ग्रंथों का जिन ग्रंथों से हम भटक सकते, और जिन ग्रंथों का सही श्रद्धान, सही तत्वों का ज्ञान, सही ग्रहण, सम्यक ग्रहण होता है, सम्यक तत्व जिसमें है, उन ग्रंथों का स्वाध्याय बार बार करो। आज क्या हो रहा है मालूम? आज ये हो रहा है, पढ़ते तो पहले छद्मस्थ का ग्रंथ है और फिर तुलना करने आते हैं सर्वज्ञ के ग्रंथों के साथ, और सर्वज्ञ के ग्रंथ कैसे लगते हैं? हमारी पूर्व से तो ये धारणा है, हम 40 साल से पढ़ते हुए आए हैं, ये क्या नई बात? तो छद्मस्त की बात तो नई तो लगेगी, आपने एक बार भी नहीं पढ़ा, चिंतन नहीं किया, तो नई बात तो है पुरानी वाणी, अनंत काल से चली आ रही है, लेकिन आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नई तो लगेगी। 40 साल में आपको पढ़ने में नहीं आया तो नई तो है वो, फिर नई बात पर श्रद्धान करने में आप हिचकिचाते हैं क्योंकि ये नई बात है, कैसे ग्रहण कर लूं? लेकिन देखो तो सही पहले, इसका उपदेशक कौन और उसका उपदेशक कौन? इसका उपदेशक कौन? उपदेशक को नहीं देखना पड़ता है क्या स्वाध्याय के काल में? क्या शास्त्र कहते हैं कोई ग्रंथ पुस्तक मिल गया खोल के पढ़ लिया तो शास्त्र है? नहीं, शास्त्र पढ़ने से पहले विवेकी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, इसका कर्ता कौन है, इसका लेखक कौन है, इसका उपदेशक कौन है, इसका विचार करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि वो सम्यक भावना को धारण करता है, पाप से डरता है, छद्मस्त की वाणी पढ़ लूं और गलत धारणा हो जाए तो ये भी बड़ा पाप हो जाएगा, इससे मिथ्यात्व का आश्रय होगा, बंद होगा, और ये सबसे बड़ा पाप है, पाप का आश्रय रुकेगा नहीं इससे। हाँ, मोक्ष तो जाएगा ही नहीं। मोक्ष को तो जाएगा नहीं, पहले तो ये करना है, जब हम स्वाध्याय करते हैं तो कम से कम ये देख लेना चाहिए, सबसे पहला काम क्या, इसका उपदेशक कौन है? आज जो है, जो पथ को छोड़कर पंथ उत्पन्न हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं आपको मालूम है? आपने विचार किया है? चिंतन करो इसका। छद्मस्त लोग जो यद्वा तद्वा लिखते जा रहे हैं ना, उसके वजह से गड़बड़ है। आप धर्म के शास्त्रों को पढ़ेंगे, एक सर्वज्ञ भगवान के शास्त्रों को पढ़ेंगे, मूल शास्त्रों को पढ़ेंगे, प्राचीन शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो ये भटकन होगा नहीं आपको, आपको तो रेडीमेड मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, और एकाएक ही आपके श्रद्धान एकदम डायरेक्ट अच्छाई पर होगा। पहले गलत पढ़ करके आए, फिर गलती सुधारने के लिए सही पढ़े, ये समय बर्बाद हुआ क्या नहीं? तब तक सम्यक दर्शन से वंचित रहना पड़ा क्या नहीं? तो ये सब गड़बड़ियां हो रही है, और ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? तो एक ही कारण है इसमें, हम राइटर को नहीं देखते। हम शास्त्र, कोई शास्त्र दान दे रहा है फुक्कट में ले लो, हाँ शास्त्र फुक्कट में, जैन शास्त्र, हाँ फुक्कट में जैन शास्त्र पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय करना शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी लग रही है? वो जो है ना, वो सर्वज्ञ वाणी तो सरलता से समझ में नहीं आती, इसमें बहुत सरल सरल लिखा है, यही रुचिकर लगता है, यही पढ़ते जा रहे हैं। अरे जो रुचिकर लग रहा है उसमें तत्वों में गड़बड़ी हो तो कितना नुकसान होगा, ये तो विचार करो, करना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान किसका? खुद का नुकसान है, और ये खुद का नुकसान कब तक करते रहोगे? इसके लिए संवेग चाहिए। कैसे डरो? संवेग भावना क्या है कि गलत शास्त्रों से भी डरो, ये संवेग भावना है, तब सम्यक दर्शन का लाभ होगा। टाइम बहुत हो गया, लिख के रखो, दोपहर में पूछना। जिनवानी नहीं है, आपका पूजन शेष है। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक।